लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ख्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया के संत पाप फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महाकीर्तन घर के प्रांगण में रविवार 6 जून को यीशु के पौत्रतम शरीर एवं रक्त के महापर्व के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
Oggi in Italia e in altri paesi si celebra la solennità del corpo e sangue di Cristo.
आज इटली एवं अन्य देशों में ख्रिस्त के पांव, शरीर एवं रक्त का महापर्व मनाया जाता है। सुसमाचार हमारे लिए अंतिम व्यारी की घटना प्रस्तुत करता है। प्रभु के शब्द एवं भाव हमारे हृदयों का स्पर्श करते हैं। वे अपने हाथों में रोटी लेते, धन्यवाद की प्रार्थना करते, उसे तोड़ते और शिष्यों को यह कहते हुए देते हैं, इससे लो, यह मेरा शरीर है। इस तरह सरलता से यीशु हमें महान संस्कार प्रदान करते हैं। यह उनका देने एवं बांटने का दीन मनोभाव है। अपने जीवन की चरम सीमा पर वे भीड़ को खिलाने के लिए बहुत अधिक रोटी नहीं परोसते, बल्कि शिष्यों के साथ पास का भोज में अपने आप को तोड़ते हैं। इस तरह यीशु दिखलाते हैं कि जीवन का लक्ष्य अपने आप को देने में है, अर्थात सबसे बड़ी बात है सेवा करना। और आज हम ईश्वर की महानता को एक रोटी के टुकड़े में, कोमलता में पुनः देख सकते हैं, जो प्रेम और बांटने में झलकता है। संत पापा ने कहा, कोमलता एक उपयुक्त शब्द है जिसको मैं रेखांकित करना चाहता था। यीशु अपने आप को इतना कोमल बनाते हैं कि वे तोड़े जाते और टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं, किंतु वहीं उनकी दुर्बलता में ही उनकी शक्ति है। यूकरिस्ट में कोमलता ही शक्ति है, प्रेम की शक्ति, जो छोटे बन गए ताकि स्वागत किए जा सकें और लोग उनसे भयभीत ना हों। प्रेम की शक्ति जिसे तोड़ा और बांटा जाता है ताकि हम पोषित हो सकें एवं जीवन पा सकें। प्रेम की शक्ति जिसको तोड़ा गया ताकि हम सभी को एक सूत्र में बांधा जा सके। और एक दूसरी शक्ति है जो यूकरिस्ट की कोमलता में उठती है, प्रेम करने की शक्ति, जो गलती को भी स्वीकार करती है। जिस रात को यीशु विश्वासघात किए गए, उन्होंने जीवन की रोटी प्रदान की, उन्होंने सबसे महान वरदान प्रदान किया, जबकि अपने हृदय में गहरे पाताल को महसूस किया। शिष्य जिसने उनके साथ खाया, उनकी थाली में रोटी डुबोया, उसी ने उन्हें धोखा दे दिया। संत पापा ने कहा, जो प्यार करता है उसके लिए धोखा सबसे बड़ा दुख है। और यीशु ने क्या किया? बुराई का प्रत्युत्तर अधिक बड़ी अच्छाई से दी। यूदस के ना को करुणा के हाथ से जवाब दिया। वे पापी को दंड नहीं दिए बल्कि जीवन दिए। जब हम यूकरिस्ट ग्रहण करते हैं, यीशु हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। वे पहचानते हैं, वे जानते हैं कि हम पापी हैं, बहुत गलती करते हैं, किंतु अपने जीवन को हमारे जीवन के साथ जोड़ने से वे कभी पीछे नहीं हटते। वे जानते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि यूकरिस्ट संतों का पुरस्कार नहीं है बल्कि पापियों का भोजन है। यही कारण है कि वे आह्वान करते हैं, इससे लो और खाओ। संत पापा ने कहा, जब जब हम जीवन की रोटी को ग्रहण करते, यीशु हमारी दुर्बलता को नया अर्थ देने के लिए आते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि उनकी नजरों में हम उससे अधिक मूल्यवान हैं जितना हम सोचते हैं। वे हमें बतलाते हैं कि वे खुश होते हैं यदि हम उनके साथ अपनी दुर्बलताओं को साझा करते हैं। वे बार बार दोहराते हैं कि उनकी करुणा हमारी दयनीय स्थिति से भयभीत नहीं है। यीशु की करुणा हमारी दयनीय स्थिति से नहीं डरती, और सबसे बढ़कर उस दुर्बलता को वे प्रेम से चंगा करते हैं जिसको हम अपने आप से चंगा नहीं कर सकते। संत पापा ने कहा, कौन सी दुर्बलताएं, हम जरा सोचें। उन्होंने कहा, हमें जो दुख देते हैं उन लोगों के प्रति क्रोध की भावना, अपने आप को दूसरों से दूर करना और अपने आप में बंद रहना, आत्मग्लानी करना और बेचैन होकर शोक मनाना, इन सब से हम खुद चंगाई नहीं पा सकते। वे ही हैं जो अपनी उपस्थिति से हमें चंगा करते हैं, अपनी रोटी एवं यूखरिस्त से। यूखरिस्त उन सभी रुकावटों के लिए एक प्रभावशाली दवाई है। जीवन की रोटी निश्चय ही कठोरता को कोमलता में बदल देती है। यूखरिस्त हमें चंगा करता है क्योंकि यह हमें यीशु के साथ जोड़ता है। यह हमें उनके जीने के तरीके को अपनाने, उनके तोड़े जाने और भाई बहनों के बीच बांटे जाने की क्षमता, बुराई का जवाब अच्छाई से देने की शक्ति प्रदान करता है। यह हमें अपने आप से बाहर निकलने और दूसरों की दुर्बलताओं की ओर प्रेम से झुकने का साहस प्रदान करता है, जैसा कि यीशु ने हमारे साथ किया है। यही यूखरिस्त का तर्क है। हम यीशु को ग्रहण करते हैं जो हमें प्यार करते और हमारी दुर्बलताओं को चंगा करते हैं, ताकि हम दूसरों को प्यार कर सकें और उनकी दुर्बलता में उनकी मदद कर सकें, और ऐसा हम पूरे जीवन में कर सकते हैं। संत पापा ने कहा, आज हमने धम्म विधि के दौरान एक स्तोत्र से प्रार्थना की। ये चार पद यीशु के पूरे जीवन का सार है, और कहा जाता है कि यीशु ने जन्म लेकर जीवन की यात्रा में साथ दिया, उसके बाद ब्यारे के समय भोजन के रूप में अपने आप को दिया, फिर क्रूस पर अपनी मृत्यु द्वारा हमारे लिए दाम चुकाया। अब वे स्वर्ग में राज करते हैं, जो हमारे लिए पुरस्कार है, जिसकी खोज हम कर रहे हैं, जो हमारा इंतजार कर रहा है। धन्य कुंवारी मरियम, जिनमें ईश्वर ने शरीर धारण किया, हमें कृतज्ञ हृदय से यूखरिस्त के वरदान को ग्रहण करने और हमारे जीवन को दूसरों के लिए उपहार बनाने में मदद दे। पौत्र यूखरिस्त हमें सभी के लिए उपहार बना दे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Et concepite de Spiritu Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्वासियों को संबोधित कर कहा, बड़े दुख के साथ मैंने कनाडा से आने वाले समाचार को सुना। बिल्कुल हैरान करने वाली खोज, जिसमें 215 बच्चों एवं छात्रों के अवशेष ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के कमलुप्स भारतीय आवासीय स्कूल में मिले हैं। मैं कनाडा के धर्मदक्षों एवं पूरी कार्तिक अरीसा के साथ कनाडा के लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करता हूं, और इस चौंकाने वाली खबर से आहत हूं। यह दुखद खोज अतीत के दुख और पीड़ा की याद दिलाती है। कनाडा के राजनीतिक एवं धार्मिक नेता दृढ़ता के साथ एक होकर इस दुखद कहानी को प्रकाश में लाने हेतु कार्य करें तथा विनम्रता से मेल मिलाप एवं चंगाई के लिए प्रतिबद्ध हों। उन्होंने कहा, ये कठिन समय हम सभी से जोरदार अपील करती है कि हम उपनिवेश बनाने से ऊपर उठें और आज के उपनिवेशी विचारधारा के बाहर निकलें तथा वार्ता, आपसी सम्मान एवं अधिकारों की पहचान तथा कनाडा के सभी बच्चों के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ें। संत पापा ने प्रार्थना करते हुए कहा, हम कनाडा के आवासीय स्कूल के सभी मृत बच्चों की आत्माओं को प्रभु को समर्पित करते हैं तथा कनाडा के दुखित आदिवासी परिवारों एवं समुदायों के लिए प्रार्थना करते हैं। तब संत पापा ने कुछ देर मौन रहकर उनके लिए प्रार्थना की। उसके बाद संत पापा ने बुर्किना फासो में शुक्रवार और शनिवार के बीच की रात को हुई हत्या के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, मैं बुर्किना फासो के सभी लोगों और परिवारों के करीब हूं, जो उन बार बार किए गए हमलों से परेशान हैं। अफ्रीका को शांति चाहिए, हिंसा नहीं। कोमो धम प्रांत के कियावेना की सिस्टर मरिया लाउरा मैनेती को रविवार को धन्य घोषित किया गया। उनकी हत्या 21 वर्षों पहले शैतानी संप्रदाय के 3 लड़कियों द्वारा क्रूरतापूर्वक की गई थी। वे जो युवाओं को सब कुछ से बढ़कर प्यार करती थीं, इन तीनों लड़कियों को माफ कर दिया था जो बुराई के वश में थी। उन्होंने हमारे लिए जीवन की योजना छोड़ दी कि हर छोटी चीज को विश्वास, प्रेम एवं उत्साह के साथ करना है। संत पापा ने कहा, ईश्वर हम सभी को विश्वास, प्रेम एवं उत्साह प्रदान करे। तब संत पापा ने ताली बजाकर नई धन्या को सम्मानित किया। तत्पश्चात संत पापा ने रोम, इटली एवं दूसरे देशों के तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने तुरिन में प्रोजेक्टो कुंतातो के बच्चों एवं कोरबेत्ता की चंगाई की माता के भक्त दल चेरिन्योला के परिवारों एवं राष्ट्रीय एम्बुलेंस संघ, उनके कर्मचारी और कलाकारों को खास रूप से याद किया। उनके उपहारों के लिए धन्यवाद देते हुए संत पापा ने दक्षिणी पुलिया के सालेंतो के लोगों का अभिवादन किया और अंत में उन्होंने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
रोटी को मिल बांध कर येसु में एक बने, दीन जनों के लिए जीवन निछावर करें। रोटी को मिल बांध कर येसु में एक बने, दीन जनों नए करार की उसी में है मेरी नई जिंदगी, हे प्रभु महादानी।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 7 जून को रोम स्थित संत लुइजी देई फ्रांचेसी कॉलेज समुदाय के पुरोहितों से मुलाकात की। संत पापा ने वाटिकन में उनका सहृदय स्वागत कर कॉलेज के रेक्टर मोनसिन्योर लाउरेट ब्रेगुएल को उनके परिचय भाषण के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, व्यक्तिवाद, आत्म पुष्टि, उदासीनता से चिन्हित समाज में आपको इसकी दैनिक चुनौतियों के साथ मिलकर रहने का अनुभव है। रोम के केंद्र में स्थित आपका घर जीवन साक्ष्य के साथ एक विविध और सहायक भाईचारे के सुसमाचारी मूल्यों के बारे में उन लोगों से संवाद करता है, खासकर जब कोई मुश्किल क्षण से गुजर रहा हो। वास्तव में आपका सामुदायिक जीवन और आपकी विभिन्न प्रतिबद्धताएं आपको ईश्वर के प्रेम और उनकी निकटता की निष्ठा का अनुभव कराने में सक्षम है। संत जोसेफ को समर्पित इस वर्ष में मैं आपको दृढ़ विश्वास, कोमल पिता के चेहरे को फिर से खोजने के लिए आमंत्रित करता हूँ। वे ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना के प्रति निष्ठा और भरोसेमंद परित्याग के मॉडल हैं। इस प्रकार संत जोसेफ हमें सिखाते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखने में यह विश्वास भी शामिल है। वे हमारे डर, हमारी निर्बलता और हमारी कमजोरियों के माध्यम से भी काम कर सकते हैं। इस वर्ष संत जोसेफ के साथ हम स्वागत, कोमलता, स्वयं के उपहार के सरल कृत्यों के अनुभव पर लौटने के लिए बुलाए गए हैं। सामुदायिक जीवन की अच्छाइयों और कमजोरियों पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा, सामुदायिक जीवन छोटे छोटे बंद समूह बनाने, खुद को अलग थलग करने, दूसरों की आलोचना और बुराई करने, खुद को श्रेष्ठ और अधिक बुद्धिमान मानने का प्रलोभन हमेशा बना रहता है और यह हम सभी को कमजोर करता है। यह अच्छा नहीं है। आप हमेशा उपहार के रूप में एक दूसरे का स्वागत करें। सच्चाई से जीने वाले भाईचारे में, रिश्तों की ईमानदारी में और प्रार्थनामय जीवन में हम एक ऐसा समुदाय बना सकते हैं जिसमें आप आनंद और कोमलता की हवा में सांस ले सकें। आगे संत पापा ने कहा, मैं आपको सामुदायिक प्रार्थना में सक्रिय और आनंदमय भागीदारी एवं साझा करने के अनमोल क्षणों को जीने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। पुरोहित एक ऐसा व्यक्ति है जो सुसमाचार के प्रकाश में अपने चारों ओर ईश्वर की उपस्थिति महसूस कराता है और बेचैन दिलों में आशा का संचार करता है। विभिन्न रोमन विद्यालयों में आप जो अध्ययन करते हैं वह आपको पुरोहित के रूप में अपने भविष्य के कार्यों के लिए तैयार करे और आपको उस वास्तविकता की बेहतर सराहना करने की अनुमति दे जहां आप आनंद के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए बुलाए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने लोगों के साथ जीने, हंसने और रोने में सक्षम, उनके साथ संवाद करने वाले भेड़ की गंध वाले चरवाहे बने। और संत पापा फ्रांसिस ने बुर्किना फासो में एक और हमले के लिए दुख व्यक्त किया जिसमें 130 से अधिक लोग मारे गए। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्र हुए विश्वासियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद कहा कि वे पश्चिम अफ्रीका देश बुर्किना फासो के एक छोटे शहर में शुक्रवार और शनिवार के बीच हुए नरसंहार के पीड़ितों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं उनके परिवारों और पूरे बुर्किनाबे लोगों के करीब हूं जो बार बार होने वाले इन हमलों से बहुत पीड़ित हैं। अफ्रीका को शांति की जरूरत है, हिंसा की नहीं। संत पापा फ्रांसिस यागा प्रांत में एक हमले का जिक्र कर रहे थे जिसमें 7 बच्चों सहित करीब 132 लोग मारे गए। सरकार ने इसे हाल के वर्षों में बुर्किना फासो में सबसे भीषण आतंकवादी हमला बताते हुए 72 घंटे के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। हालांकि किसी भी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अन्य 40 निवासी कथित रूप से घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि हथियारबंद हमलावरों ने नाइजर की सीमा के पास जिहादियों से त्रस्त पूर्वोत्तर के सोलहान गांव को रात भर घेर लिया। उन्होंने घरों और बाजारों को भी जला दिया। हजारों संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की उपस्थिति के बावजूद पश्चिम अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में अलकायदा और इस्लामी स्टेट से जुड़े जिहादियों के हमले साल की शुरुआत से तेजी से बढ़े हैं, खासकर बुर्किना फासो, माली और नाइजर में। नागरिकों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हिंसा ने केवल 2 वर्षों में 1.14 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित किया है, जबकि गरीब शुष्क देश पड़ोसी माली लगभग 20,000 शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है। उधर खतरनाक सामग्रियों से लदा जहाज 20 मई से श्रीलंका के पश्चिमी तट से दूर जल रहा है। खतरनाक पदार्थ समुद्र में गिर रहे हैं। श्रीलंका के इतिहास में सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदा देश के तट पर होने वाली आपदा है। जलते मालवाहक जहाज को डूबने से रोकने के लिए 2 सप्ताह के संघर्ष के बाद सबसे भयावह परिणाम आया है। जहाज बुधवार को आंशिक रूप से डूब गया। जहाज जिसे MV एक्सप्रेस पर्ल कहा जाता है, राजधानी कोलंबो से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में 13 दिनों तक जलता रहा, जिसे नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टिक बैग उत्पादन करने के कच्चे माल के 28 बड़े कंटेनर और अन्य खतरनाक रसायन समुद्र में और समुद्री तटों की ओर फैल रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोलंबो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल मालकम रंजीत ने जहाज कंटेनर के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का सुझाव दिया। महाधर्माध्यक्ष रंजीत ने कहा, मुझे इस दिशा में एक पहल देखने की उम्मीद है, क्योंकि हम इसे श्रीलंका के सतही रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते, जहां आज COVID-19 महामारी के खिलाफ टीके खरीदने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। जहाज से गिराया गया ईंधन पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा मछली पकड़ने वाले समुदाय और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर नुकसान होगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।